नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। आई वॉज इट स्टीव वॉजनियक की जीना स्मिथ के साथ लिखी आत्मकथा है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेमी किशोर से व्यक्तिगत कंप्यूटिंग के प्रमुख आविष्कारकों में उनके विकास को दर्ज करती है। यह पुस्तक 2006 में प्रकाशित हुई और संस्मरण, तकनीकी इतिहास तथा आविष्कारक की निजी दृष्टि का मिश्रण है। वॉजनियक अपने पिता से इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों की कार्यप्रणाली सीखने, शौकिया परियोजनाओं, हैकिंग संस्कृति, हेवलेट पैकार्ड में काम और स्टीव जॉब्स के साथ एप्पल की स्थापना तक की घटनाएं सुनाते हैं। इसका केंद्र केवल एप्पल की व्यावसायिक सफलता नहीं, बल्कि ऐसे इंजीनियर की सोच है जो सुंदर, किफायती और उपयोग में सरल मशीन बनाना चाहता था। छोटे बातचीत जैसे प्रसंगों में लिखी गई पुस्तक वॉजनियक की तकनीकी जिज्ञासा, स्वतंत्र काम करने की आदत और हास्यबोध को सामने लाती है। पुस्तक का घोषित उद्देश्य उनके योगदान, जॉब्स के साथ संबंध और एप्पल में उनकी भूमिका से जुड़ी प्रचलित धारणाओं को उनकी अपनी आवाज में स्पष्ट करना भी है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, बचपन की इलेक्ट्रॉनिक्स शिक्षा ने आविष्कार को रहस्य नहीं, प्रक्रिया बनाया। पुस्तक का एक आधारभूत विचार यह है कि वॉजनियक की क्षमता किसी अचानक मिले प्रतिभा क्षण से नहीं बनी। उनके पिता, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम करते थे, ने उन्हें पुर्जों के नाम याद कराने के बजाय यह समझाया कि वे काम कैसे करते हैं। यह अंतर महत्वपूर्ण है। किसी उपकरण को केवल इस्तेमाल करना और उसके भीतर के कारणों को समझना दो अलग स्तरों की शिक्षा है। वॉजनियक के संस्मरण में यह शुरुआती प्रशिक्षण उन्हें जटिल सर्किटों को डरावनी पहेली के बजाय छोटे, हल करने योग्य हिस्सों में देखने की आदत देता है। वे अपने सीखने की एक व्यावहारिक पद्धति भी बताते हैं, वर्तमान चरण को ठीक से पूरा करना और अंतिम परिणाम की चिंता में उस चरण को अधूरा न छोड़ना। इंजीनियरिंग में यह दृष्टि डिजाइन, परीक्षण और त्रुटि सुधार की वास्तविक प्रक्रिया से मेल खाती है। पुस्तक इस बात को भी रेखांकित करती है कि युवा अवस्था के स्वनिर्मित उपकरण, शरारतें और प्रयोग व्यर्थ समय नहीं थे, बल्कि समस्या समझने की प्रयोगशाला थे। पाठक के लिए उपयोगी निष्कर्ष यह नहीं कि हर व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक्स सीखनी चाहिए, बल्कि यह कि रचनात्मक दक्षता अक्सर मूल सिद्धांतों की स्पष्ट समझ, लगातार अभ्यास और गलतियों के साथ धैर्य से बनती है। वॉजनियक की कहानी प्रतिभा को रहस्यमय बनाने के बजाय उसे जिज्ञासा और अनुशासित निर्माण से जोड़ती है। दूसरा, एप्पल वन और एप्पल टू में तकनीकी सुंदरता के साथ उपयोगिता का संतुलन। आई वॉज में एप्पल की शुरुआत को केवल कंपनी निर्माण की कथा के रूप में नहीं, कंप्यूटर डिजाइन की समस्या के रूप में देखा गया है। वॉजनियक के लिए चुनौती ऐसी मशीन बनाना थी जो उस समय के बड़े कठिन और विशेषज्ञ केंद्रित कंप्यूटरों के विपरीत व्यक्ति के निकट हो। एप्पल वन के बाद एप्पल टू पर उनका काम इस सोच को अधिक परिपक्व रूप देता है। पुस्तक के अनुसार एप्पल वन बनाते समय उनके पास कई सुधारों के विचार थे, पर उन्होंने पहले डिजाइन को समय पर पूरा करने को प्राथमिकता दी। फिर एप्पल टू में रंगीन ग्राफिक्स, विस्तार स्लॉट और अधिक पूर्ण उत्पाद अनुभव जैसे सुधार शामिल हुए। यह क्रम एक व्यावहारिक डिजाइन सिद्धांत दिखाता है। पहली कार्यशील वस्तु को पूर्णता के दबाव में रोकना नहीं चाहिए, लेकिन उसके अनुभव से अगला संस्करण बेहतर बनाया जा सकता है। विस्तार स्लॉट पर मतभेद का प्रसंग भी खुलापन और नियंत्रण के बीच तनाव को दिखाता है। मशीन को उपयोगकर्ता तथा अन्य निर्माताओं के प्रयोग के लिए खुला रखना उसकी आयु और संभावनाएं बढ़ा सकता है। वहीं केस, कीबोर्ड, स्क्रीन से जुड़ाव और संग्रहण जैसी चीजें बताती हैं कि तकनीकी रूप से सक्षम सर्किट पर्याप्त नहीं होता। व्यक्तिगत कंप्यूटर तभी व्यापक बनता है जब वह रोजमर्रा के उपयोग के लिए समझ में आने वाला उत्पाद बने। पुस्तक इसी कारण इंजीनियरिंग को मानवीय सुविधा से अलग नहीं करती। तीसरा, इट स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियक की साझेदारी में आविष्कार और उत्पादकरण की अलग भूमिकाएं। पुस्तक एप्पल के आरंभिक इतिहास में वॉजनियक की भूमिका को स्पष्ट करती है, पर जॉब्स के योगदान को पूरी तरह नकारने का प्रयास नहीं करती। वॉजनियक स्वयं इस अंतर को स्वीकार करते हैं कि एप्पल वन और एप्पल टू के तकनीकी डिजाइन मुख्यतः उनकी इंजीनियरिंग से निकले, जबकि जॉब्स ने उन्हें दुनिया बदलने वाले उत्पाद में बदलने की दिशा दी। यह अंतर संस्मरण का महत्वपूर्ण व्यावसायिक पाठ है। आविष्कार, उत्पादकरण, वितरण और बाजार तक पहुंच परस्पर जुड़ी लेकिन अलग क्षमताएं हैं। एक उत्कृष्ट सर्किट अपने आप में सफल उपभोक्ता उत्पाद नहीं बनता, उसे निर्माण, प्रस्तुति, पूंजी, बिक्री और स्पष्ट उपयोग प्रस्ताव की भी जरूरत होती है। माइक मार्कुला के आने और वॉजनियक के हेवलेट पैकार्ड छोड़ने का प्रसंग इसी बदलाव को दर्शाता है। वॉजनियक प्रबंधक बनने के बजाय इंजीनियर बने रहना चाहते थे, जिससे उनकी पहचान और प्रेरणा का पता चलता है। फिर भी एप्पल में शामिल होना इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्हें तकनीकी काम जारी रखने की जगह दिखी। पुस्तक साझेदारी को सरल नायक कथा नहीं बनाती, यह संकेत देती है कि प्रभावशाली संस्थाएं अक्सर ऐसे लोगों से बनती हैं जिनकी प्राथमिकताएं अलग हों, बशर्ते वे एक उत्पाद के अलग अलग आवश्यक पक्षों को आगे बढ़ा सकें। हालांकि पाठक को यह भी समझना चाहिए कि यह घटनाओं का वॉज़्नियाक केंद्रित संस्मरण है, एप्पल का पूर्ण व्यावसायिक इतिहास नहीं। चौथा, अकेले सृजन की वकालत और समिति आधारित डिजाइन की सीमा। वॉज़्नियाक पुस्तक में बार बार उस मानसिक स्थिति की ओर लौटते हैं जिसमें वे अकेले बैठकर सर्किट और प्रणालियों के बारे में सोचते थे। उनका तर्क है कि उत्कृष्ट आविष्कारक अक्सर कलाकारों जैसे होते हैं, वे अपने विचार के भीतर लंबे समय तक काम करते हैं और बहुत जल्दी बाहरी समझौते स्वीकार नहीं करते। इसी संदर्भ में वे कहते हैं कि क्रांतिकारी चीजें समितियों से बहुत कम निकलती हैं। इस विचार को पुस्तक के संदर्भ में समझना आवश्यक है। उनका निशाना हर प्रकार का सहयोग नहीं, बल्कि ऐसा निर्णय तंत्र है जिसमें विपणन, पदानुक्रम या सर्वसम्मति की मांग मूल डिजाइन को कमजोर कर दे। एप्पल के शुरुआती कंप्यूटरों की तकनीकी एकरूपता, कम संसाधनों में दक्षता और स्पष्ट वास्तुकला उनकी व्यक्तिगत नियंत्रण वाली कार्यशैली से जुड़ी दिखाई देती है। फिर भी संस्मरण स्वयं एक सीमा भी दिखाता है। मशीन को बाजार तक पहुंचाने के लिए जॉब्स, मार्कुला, निर्माण और अन्य सहयोगियों की जरूरत पड़ी, इसलिए पुस्तक से निकला संतुलित निष्कर्ष यह है कि आरंभिक खोज के चरण में व्यक्ति को गहरे निर्बाध चिंतन का अधिकार चाहिए, जबकि बाद के चरण में विविध विशेषज्ञताओं का समन्वय जरूरी हो सकता है। आधुनिक उत्पाद टीमों के लिए यह उपयोगी अंतर है। हर निर्णय सामूहिक बनाने के बजाय यह तय करना अधिक महत्वपूर्ण है कि किस निर्णय में स्वतंत्र तकनीकी दृष्टि बचानी है और किस में सहयोग से गुणवत्ता बढ़ती है। अंत में ग्राफिकल इंटरफेस को भविष्य पहचानने का क्षण और व्यापक पहुंच का सिद्धांत। पुस्तक के बाद के हिस्से में ज़ेरॉक्स पार्क की यात्रा और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को देखने का अनुभव तकनीक की दिशा पहचानने के उदाहरण के रूप में आता है। उस समय अधिकांश कंप्यूटर पार्ट आधारित आदेशों से चलते थे, उपयोगकर्ता को लंबे निर्देश टाइप करने पड़ते थे और मशीन की भाषा सीखनी पड़ती थी। वॉज़्नियाक ने खिड़कियों, आइकनों, मेन्यू और माउस पर आधारित इंटरफेस को केवल एक नया दृश्य रूप नहीं माना, उन्हें उसमें मानसिक और शारीरिक मेहनत कम करने वाली व्यवस्था दिखी जिससे गैर तकनीकी लोग भी शक्तिशाली कंप्यूटिंग कार्य कर सके। यह अवलोकन एप्पल II की उपयोगकर्ता केंद्रित सोच से जुड़ता है। हालांकि बाद में लीसा और मैकिंटोश ने इस विचार को अलग रूप में आगे बढ़ाया। यहां पुस्तक का व्यापक सबक तकनीकी पूर्वानुमान से जुड़ा है। परिवर्तनकारी अवसर अक्सर किसी एक नई विशेषता में नहीं बल्कि उपयोगकर्ता के अनुभव में आने वाले मूल बदलाव में छिपा होता है। वॉज़्नियाक के लिए ग्राफिकल इंटरफेस ऐसा एकतरफा द्वार था जिसे देखने के बाद पुराने तरीके पर्याप्त नहीं लग सकते थे। यह प्रसंग पाठक को हर नए चलन के पीछे भागने की सलाह नहीं देता, इसके बजाय यह पूछने का मानदंड देता है, क्या नई तकनीक वास्तव में लोगों के लिए जटिल काम को कम प्रयास, अधिक स्पष्टता और अधिक पहुंच के साथ संभव बनाती है? यदि उत्तर हाँ हो तो उसका प्रभाव केवल तकनीकी सुधार से कहीं बड़ा हो सकता है। निष्कर्ष में, iWAZ उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिन्हें व्यक्तिगत कंप्यूटर के आरंभिक इतिहास, एप्पल के शुरुआती वर्षों या इंजीनियर की कार्य पद्धति में रुचि है। उभरते आविष्कारक और तकनीकी विद्यार्थी इसमें सर्किट डिजाइन की औपचारिक पाठ्य पुस्तक नहीं पाएंगे, लेकिन वे यह समझ सकते हैं कि सीमित साधनों, गहरी जिज्ञासा और बार बार के व्यक्तिगत प्रयोग से विचारों को कार्यशील वस्तुओं में कैसे बदला जाता है। उत्पाद प्रबंधक और उद्यमी भी आविष्कार तथा उत्पादकरण की अलग भूमिकाओं पर विचार कर सकते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ इसकी छोटी छोटी घटनाओं में है जो मूल सिद्धांत सीखने, एक समय में एक समस्या पर ध्यान देने, उपयोगकर्ता के प्रयास को घटाने और सही अवसर पहचानने जैसे बिंदुओं को ठोस बनाती हैं। समान विषय की एप्पल केंद्रित पुस्तकों की तुलना में इसका अंतर इसका स्वर है। यह कंपनी की रणनीति, वित्तीय संघर्षों या कॉरपोरेट संघर्षों का व्यापक विश्लेषण नहीं करती, इसके बजाय यह उस व्यक्ति की सीधी, कभी कभी अनगढ़ लेकिन विशिष्ट आवाज देती है जिसने शुरुआती मशीनों की तकनीकी संरचना बनाई। यही इसकी शक्ति और सीमा दोनों है। जो पाठक सुसंगठित व्यावसायिक इतिहास या अत्यधिक साहित्यिक संस्मरण चाहते हैं उन्हें यह अधूरा लग सकता है, लेकिन जो लोग तकनीकी रचनात्मकता के मानवीय पक्ष, आनंद और स्वतंत्र सोच को एक आविष्कारक की नजर से देखना चाहते हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण प्रथम हस्त दस्तावेज है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं स्टीव वॉज़्नियाक, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।